लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलिसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुन रहे हैं। क्रिस्तुस विवित का सातवां अध्याय युवाओं की प्रेरिताई के बारे में जिक्र करता है। संत पापा युवाओं के संबंध में हमारी प्रेरिताई को धर्म सभा निरूपित करते हैं जो हमें उनके साथ मिलकर चलने की बात कहती है। अपने पिछले प्रसारण में हमने कहा कि युवा स्वयं अपने में प्रेरिताई के माध्यम हैं। हमें निश्चित रूप में उन्हें सहायता और दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, लेकिन वहीं हमें उन्हें स्वतंत्र छोड़ देने की जरूरत है जिससे वे अपने में नए प्रारूपों का विकास सकारात्मक और एक निश्चित साहस में कर सकें। वहीं हमें उन सभी अभ्यासों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिनके द्वारा गुणों का अभ्यास और विकास होता है। तरीके, भाषा और लक्ष्य जो युवाओं को कलिसिया और यीशु ख्रिस्त के निकट प्रभावकारी ढंग से लाने में मदद करते हैं। इससे कोई अंतर नहीं होता कि वे कहां से आते और उनकी पृष्ठभूमि कैसी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम प्रभावकारी और बेहतर रूप में किस तरह ईश्वरीय खुशी के सुसमाचार को प्रसारित करते हैं। युवा प्रेरिताई को अपने में धर्म सभा की भांति होने की जरूरत है। यह हमसे इस बात की मांग करती है कि हम एक साथ मिलकर चलें। ऐसा करने के द्वारा हम उन बातों को महत्व देते हैं जिससे पवित्र आत्मा आदर्शों के रूप में एक सह उत्तरदायित्व स्वरूप कलिसिया और इसके हर एक सदस्य को प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरित हम एक सहभागिता और सह उत्तरदायित्व कलिसिया के अंग बनते हैं। इसके द्वारा हम अपनी धनी विविधता की प्रशंसा करने के योग्य बनते, कृतज्ञता पूर्ण हृदय से लोक धर्मियों के सहयोग को स्वीकारते जिसके अंतर्गत युवा नर और नारी समर्पित लोग साथ ही बहुत से संगठन और योजनाओं के संघ आते हैं। यह अपने से किसी को अलग या किसी का बहिष्कार नहीं करती है। इस भांति एक दूसरे से सीखने के द्वारा हम ख्रीस्त के बहुरूपी सुंदर चेहरे को परिलक्षित करते हैं जो कलिसिया की एक सच्चाई है जिसे व्यक्त करने हेतु वह बुलाई जाती है। वह अपने में युवाओं को आकर्षित करने में सक्षम होगी क्योंकि उसकी एकता एक चट्टानी नहीं वरन असंख्य कृपाओं का मेल है जिसे पवित्र आत्मा अपनी निरंतरता में उसके ऊपर उड़ेलते हुए उसमें नवीनता लाते और उसे अपनी दरिद्रता से ऊपर उठाते हैं। धर्म सभा में बहुत सारे ठोस विचार उभर कर आए जिनके द्वारा युवा प्रेरिताई के संबंध में उन बातों को दूर करते हुए नवीनता लाई जा सके जो अपने में प्रभावकारी नहीं रह गई है क्योंकि उनके द्वारा वर्तमान समय और समकालीन सांस्कृतिक मुद्दों के विषय में हम वार्ता में प्रवेश नहीं करने के योग्य रह जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि संत पापा फ्रांसिस उन सारी बातों को यहाँ सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं। उनमें से बहुत सी बातों को हम धर्म सभा के पूर्ण दस्तावेज में प्राप्त कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं साधारण रूप में युवा प्रेरिताई के संबंध में मुख्य रूप से दो क्रियाकलापों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला, हमारी पहुँच, जिसे हम हमारे पेश आने के तरीके कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम युवाओं को यीशु ख्रिस्त के अनुभूति हेतु आकर्षित कर सकते हैं। वहीं दूसरा विकास है, हम किस तरह उन युवाओं की मदद कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही ख्रिस्त के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में किया है, जिससे वे उस अनुभव को और भी मजबूत बना सकें। जहां तक हमारी पहुंच का सवाल है, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि युवा स्वयं अपने में इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि वे कौन कौन से आकर्षक रूप हैं जिनके माध्यम वे आपस में एक साथ मिल सकते हैं। उन्हें पता है कि किसी भी कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता को सामाजिक संचार माध्यमों, लेखों, गीत संगीतों और अन्य वीडियो के जरिए किस तरह आयोजित करना है। हमें उन्हें केवल उत्साहित और स्वतंत्रता प्रदान करने की जरूरत है, जिससे वे अपने में जोश और उत्साह का अनुभव करते हुए उन युवाओं में सुसमाचार का प्रचार कर सकें, जिसे वे विभिन्न स्थानों में पाते हैं। जब हम उन्हें संदेश देते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक यात्रा में हो या बार में एक वार्ता, स्कूल से छुट्टियों का समय या कोई भी ईश्वरीय रहस्यात्मक रूप, यह उनमें विश्वास की अनुभूति को और भी प्रगाढ़ बनाए। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यद्यपि यह है कि हर युवा अपने में यह साहस करे कि वह अपनी ओर से उपजा भूमि में, अर्थात हर एक दूसरे युवा के हृदय में ईश्वरीय विश्वास रूपी बीज को बोने में सक्षम हो। इस पहुंच में हमें चाहिए कि हम युवाओं के संग निकटता, उद्दारता, संबंध परक और अस्तित्वगत प्रेम की भाषा का उपयोग करें, जो उनके हृदयों का स्पर्श करती हो, जो उनके जीवन को प्रभावित करता हो और उनमें आशा और उम्मीदों को जागृत करता हो। हमें चाहिए कि हम युवाओं को प्रेम के व्याकरण से संबोधित करें, न कि उपदेश के माध्यम। युवाओं को उन लोगों की बात समझ में आती है जो अपने जीवन के द्वारा जीवन का संचार करते हैं, उन लोगों की बातें जो उनके लिए और उनके साथ रहते हैं। वे उनकी बातों को समझते हैं जो अपनी गलतियों और कमजोरियों के बावजूद अपने जीवन में विश्वास को समर्पण के साथ जीने हेतु प्रयासरत रहते हैं। हमें देह धारण के सुसमाचार को खास रूप में आज के संदर्भ में युवाओं की भाषा में प्रस्तुत करने की जरूरत है। जहां तक विकास का सवाल है, संत पापा कहते हैं, मैं एक विशेष बिंदु पर जोर देना चाहूंगा। कुछ स्थानों में यह होता है कि युवाओं में ईश्वरीय अनुभूति प्रदान करने हेतु एक शक्तिशाली प्रयास किया जाता है, यीशु के साथ उनका मिलन जो उनके हृदयों को स्पर्श करता हो। लेकिन ये सारी शिक्षा बैठकों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें सैद्धांतिक और नैतिक मुद्दों, आज की दुनिया की बुराइयों, कलीसिया और उसके सामाजिक सिद्धांत, शुद्धता, विवाह, जन नियंत्रण इत्यादि बातों पर विशेष बल दिया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से युवागण अपने में उबाव अनुभव करते हैं। वे यीशु ख्रिस्त से अपने मिलन की आग और उनके अनुसरण से मिलने वाली खुशी को बुझता हुआ पाते हैं। बहुत से युवा इसका परित्याग कर देते, वे उदासीन या अपने में नकारात्मक हो जाते हैं। कलीसियाई सिद्धांतों की बातों को उन्हें बतलाने हेतु उत्सुकता से पहले हमें चाहिए कि हम उनमें ख्रिस्तीय जीवन के अनुभवों को जागृत और सुदृढ़ करने का प्रयास करें। रोमानो गाल्डिनी के शब्दों में, जब हम अपने में अद्वितीय प्रेम का अनुभव करते तो सारी चीजें इसका अंग बन जाती हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम कल भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मेरे भगवान। घर में आओ
मेरा घर
तेरा घर घर में आओ मेरे भगवन दिल में आओ
तेरा मेरा जो है नाता
अंधेरे को मिटाता तू उजाला लेके आता तू है मेरा तू स्वामी तू दाता
मेरे भगवन दिल में आओ
मेरे दिल को अपना समझो तेरा घर घर में आओ
मेरा घर
तेरा घर घर में
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने वैटिकन के तत्वाधान में आयोजित कृषम शिविर में भाग लेने वाले बच्चों से आकस्मिक मुलाकात की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, आज सुबह 9 बजे से कुछ ही देर बाद संत पापा ने स्टाते रगाजी या ग्रीष्म बाल शिविर के प्रतिभागी बच्चों से मुलाकात की, जिसको वैटिकन सिटी के अंदर आयोजित किया गया है। जब संत पापा उनके पास पहुंचे तो बच्चे वैटिकन के पॉल सिस्टम सभागार में नाश्ता कर रहे थे। संत पापा ने हर एक टेबल पर जाकर बच्चों से बातें की। उन्होंने सभागार के अंदर बच्चों से खेलने के लिए तैयार क्षेत्र का भी दौरा किया। बच्चों के साथ कुछ देर बैठते हुए संत पापा ने उन्हें नए मित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जो लोग केवल अपने आप में मस्ती करना चाहते हैं वे स्वार्थी हैं। आप लोगों को दोस्तों के साथ रहना और अच्छा समय व्यतीत करना चाहिए। 10 बजे के लगभग संत माथा लौटते हुए संत पापा ने शिविर के प्रबंधकों से मुलाकात की और उनके कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ग्रीष्म बाल शिविर की शुरुआत जुलाई के शुरू में हुई है। यह वैटिकन उद्यान, वैटिकन हेलीपोर्ट और पॉल सिस्टम सभागार में आयोजित की गई है। 5 से 14 साल की उम्र वाले वैटिकन में कार्यरत कर्मचारियों के कुल 100 बच्चे शिविर में भाग ले रहे हैं, जिसमें बच्चों को दिन भर मनोरंजन, खेल सीखने और प्रार्थना करने आदि का अवसर प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रमों में तैरना, टेनिस, फुटबॉल, पिंग पोंग और बास्केटबॉल खेलना भी शामिल है। परिवार वह खूबसूरत जगह है जहाँ निस्वार्थ प्रेम, सेवा, करुणा, समझदारी, सम्मान और क्षमा जैसे सद्गुण विकसित होते हैं, जो परिवार में खुशहाली लाते हैं। परिवार में ये गुण तभी विकसित होते हैं जब परिवार प्रभु के प्रेम और अनुग्रह से प्रेरित हो। संत पापा ने 21 जुलाई को एक ट्वीट प्रसिद्ध कर एक सफल एवं फलप्रद परिवार की कामना की। उन्होंने संदेश में लिखा, जब माता पिता एवं बच्चों का प्रेम प्रभु के प्रेम से प्रेरित एवं शुद्ध हो तब यह पूर्ण रूप से फलप्रद होता एवं परिवार के अंदर एवं बाहर अच्छा फल लाता है। याचकों के लिए गठित परमधम पीठे धम संघ ने पल्ली समुदायों में सुधार लाने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए एक नया दस्तावेज प्रकाशित किया है। दस्तावेज का शीर्षक है, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन में पल्ली समुदाय का प्रेरितिक बदलाव। कलीसिया सभी को अपना स्थान पाने का अवसर देती है, साथ ही यह प्रत्येक की बुलाहट को भी सम्मान देती है। यही विचार पल्ली के दिशा निर्देश का मूल बिंदु है, जिसको याचकों के लिए गठित परमधम पीठे धम संघ ने सोमवार को जारी किया। दस्तावेज किसी नई नीति का प्रचार नहीं करता, बल्कि मौजूदा नियमों और विहित मानदंडों को बेहतर ढंग से लागू करने के तरीकों का प्रस्ताव करता है। उद्देश्य है कि बपतिस्मा प्राप्त लोगों को सह जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए और पल्लियों के बीच में सामिप्य एवं सहयोग पर आधारित प्रेरित देखभाल को बढ़ावा दिया जाए।
दिशा निर्देश से कुछ चीजें जबरदस्त सामने उभरती हैं। वे चीजें हैं मिशनरी नवीनीकरण और पल्ली के प्रेरितिक बदलाव की आवश्यकता, ताकि विश्वास से गतिशीलता एवं रचनात्मकता पा सकें, जो पल्ली को सभी बपतिस्मा प्राप्त विश्वासियों के सहयोग से हमेशा आगे बढ़ने में मदद देता है। दिशा निर्देश में 11 अध्याय हैं और इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग प्रेरितिक बदलाव, मिशनरी पहुँच, पल्ली का महत्व पर विस्तृत चिंतन प्रस्तुत करता है। दूसरा भाग पल्ली समुदाय के उप विभाजन, उनकी विभिन्न प्रेरितिक भूमिकाएं और तरीके जिनमें प्रशासनिक नियम लागू होते हैं आदि विषयों पर आधारित है। अनुदेश में पल्ली को घरों के बीच एक घर कहा गया है। दस्तावेज के पहले भाग के अनुसार पल्ली पुनर्जीवित प्रभु का अपने लोगों के बीच रहने का स्थायी चिन्ह है। पल्ली का एक मिशनरी स्वभाव है। यह मुख्य रूप से सुसमाचार प्रचार के लिए है। वैश्वीकरण और डिजिटल दुनिया ने इस क्षेत्र के साथ इसके विशिष्ट संबंध को बदल दिया है। अतः पल्ली का अर्थ केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह अस्तित्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि इस पृष्ठभूमि पर पल्ली लचीले और समय की मांगों का जवाब देती है तथा इतिहास में विश्वासियों के लिए अपनी सेवा को अपनाती है। अनुदेश में पल्ली संरचना के मिशनरी नवीनीकरण पर जोर देता है। इस तरह के नवीनीकरण में आत्म केंद्रण और कठोरता नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे आध्यात्मिक गतिशीलता एवं ईश वचन की घोषणा, संस्कारीय जीवन और दानशीलता पर आधारित प्रेरितिक मन परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। मुलाकात की संस्कृति को समाज एकात्मकता और सभी के प्रति खुलापन की आवश्यक पृष्ठभूमि पर बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह पल्ली समुदाय एक सच्ची संगत की कला विकसित करेगा। विशेषकर अनुदेश ठोस उदारता द्वारा विश्वास का साक्ष्य देने और गरीबों की मदद करने की सलाह देता है, जिसके द्वारा पल्ली सुसमाचार का प्रचार करती है। इसके अनुसार हर बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार का नायक होना चाहिए। अतः प्रेरितिक देखभाल के मिशनरी सुधार को आगे बढ़ाने हेतु मानसिक और आंतरिक बदलाव आवश्यक है। उधर भारत के कार्तिक धर्माध्यक्ष नाबालिगों की यौन दुराचार मामले में वैटिकन के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सहमत हैं, चाहे यह निराधार ही क्यों न दिखाई पड़े। कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स अंतोनियो मचाडो ने 20 जुलाई को उका समाचार से कहा, हम दिशा निर्देश को नागरिक कानून के अनुसार लागू करेंगे। वैटिकन का यह दिशा निर्देश 16 जुलाई को विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित परम धम्म पीठ धम्म संघ के द्वारा प्रकाशित की गई 2019 को प्रकाशित प्रेरितिक पत्र बोस एस्तिस लुक्स मुंदी में संत पापा फ्रांसिस ने कहा था कि सभी पुरोहित एवं धर्म सामाजिक संस्थाएं यौन दुराचार के मामले में किसी भी संदेह को लेकर अपने अधिकारियों को सूचित करें, जबकि संत पापा ने यह भी कहा था कि याजक नागरिक सूचना के नियम से भी बंधे हैं। अब वैटिकन चाहती है कि धर्माध्यक्ष ऐसे मामलों को देश के नागरिक अधिकारियों को सूचित करें। इसने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा करने में असफल होने पर वे अपने कर्तव्य से विमुख किए जाने के लिए कार्यालय से हटाए जा सकते हैं। भारत में एक विशेष कानून के तहत बच्चों की यौन शोषण की रिपोर्ट करना अनिवार्य है और ऐसा करने में विफल होने वालों को न्यूनतम 1 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।